संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 10 जून 2022 के बुलेटिन की सुर्खियां। यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया भर में बढ़ती खाद्य व ऊर्जा कीमतों ने दहलाई जिंदगियां, विकासशील देश सर्वाधिक प्रभावित। श्रीलंका में 17 लाख लोगों की जीवन रक्षक मदद के लिए 4.72 करोड़ डॉलर की रकम जुटाने की अपील। यूएन महासभा के लिए चुने गए नए अध्यक्ष और सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव। और दक्षिण सूडान में यूएन शांति रक्षक के रूप में तैनात भारत के चंडीगढ़ की एक पुलिस इंस्पेक्टर परमजीत कौर सेखों के साथ खास बातचीत। हम आपको याद दिलाते चलें कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया समाचार सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। आप हमारा न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हर दिन समाचार आपको खुद ब खुद मिलते रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर के देशों द्वारा इस वर्ष खाद्य आयात पर 1.8 ट्रिलियन डॉलर की रकम खर्च करने का अनुमान है, जो कि एक नया रिकॉर्ड होगा। मगर चिंता की बात यह है कि इस रिकॉर्ड रकम में भी ज्यादा नहीं बल्कि कम खाद्य सामग्री खरीदी जा सकेगी। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य व कृषि संगठन FAO की गुरुवार को जारी इस ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कुछ देशों के लिए तो ये स्थिति बढ़ती कीमतों का बोझ वहन करने की उनकी सामर्थ्य खत्म हो जाने का संकेत है। यूएन एजेंसी ने अपनी नवीनतम खाद्य परिदृश्य रिपोर्ट में कहा है कि इस वर्ष दुनिया भर में खाद्य पदार्थों के आयात पर जो अतिरिक्त 51 अरब डॉलर की रकम खर्च होगी, उसमें से करीब 49 अरब डॉलर की रकम बढ़ी हुई कीमतों के कारण खर्च होगी। उधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने आगाह किया है कि यूक्रेन में युद्ध से उपजे प्रभावों के कारण जीवन व्यापन के लिए कीमतों में उछाल आया है और इससे कोई भी देश या समुदाय अछूता नहीं है। महासचिव गुटेरेश ने यूक्रेन में संकट से वैश्विक खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा व वित्त पोषण के लिए उत्पन्न चुनौतियों पर केंद्रित एक नवीनतम रिपोर्ट बुधवार को जारी की। यूएन प्रमुख ने ये रिपोर्ट जारी करने के अवसर पर कहा,
In reality, there is only one way to stop this gathering storm in its tracks. The Russian invasion of Ukraine must end.
एंटोनियो गुटेरेश कह रहे थे कि वास्तविकता में केवल एक तरीका है इस बढ़ते तूफान और इसके खतरों को रोकने का, और वो है यूक्रेन पर रूसी हमले का तुरंत खात्मा। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक हमें दुनिया भर में बढ़ती खाद्य व ऊर्जा कीमतों में स्थिरता लानी होगी और विकासशील देशों के लिए कुछ राहत उत्पन्न करनी होगी। यूक्रेन का खाद्य उत्पादन और रूस के खाद्य व उर्वरक उत्पाद युद्ध के बावजूद फिर से बाजारों में लाने होंगे। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। वैश्विक संकट जवाबी कार्रवाई समूह की रिपोर्ट के अनुसार 94 देशों में कम से कम 1.60 अरब लोग यूक्रेन में संकट के कम से कम एक पहलू से प्भावित हुए हैं। 1.20 अरब लोग उन देशों में रहते हैं जिन पर गंभीर प्रभाव होने का जोखिम है। श्रीलंका में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और साझीदार संगठनों ने देश में आर्थिक संकट के कारण उपजी मानवीय राहत आवश्यकताओं की पृष्ठभूमि में गुरुवार को एक साझा योजना पेश की है, जिसमें सर्वाधिक प्रभावित 17 लाख लोगों तक जीवन रक्षक सहायता पहुंचाने के लिए 4.72 करोड़ की धनराशि जुटाने की पुकार लगाई गई है। कुछ और जानकारी के साथ शिवानी काला।
इस रकम के जरिए इस साल जून से सितंबर तक 4 महीनों के दौरान जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने की योजना है। इससे पहले श्रीलंका की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से अंतर्राष्ट्रीय सहायता का निवेदन किया था, ताकि हाल के दिनों में देश में संकट की वजह से उपजी राहत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस क्रम में स्वास्थ्य देखभाल, अति आवश्यक दवाओं, भोजन, कृषि, सुरक्षित पेयजल, आपात आजीविका व संरक्षण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना होगा। गुरुवार को जो योजना प्रस्तुत की गई है, उनमें उन 17 लाख लोगों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है, जिनकी आजीविका, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता पर सबसे अधिक जोखिम है और जिन्हें तत्काल समर्थन की आवश्यकता है।
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने विश्व महासागर दिवस के एक समारोह कार्यक्रम में कहा है कि पूरे पृथ्वी ग्रह की मांगें पूरी करने में सक्षम एक स्वस्थ व उत्पादक महासागर सुनिश्चित करना एक सामूहिक जिम्मेदारी है और ये तभी संभव है जब हम सभी एक साथ मिलकर काम करें। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
यूएन महासचिव ने ध्यान दिलाया कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण के तीहरे संकट ने महासागर के स्वास्थ्य के लिए जोखिम उत्पन्न कर दिया है। पिछले महीने विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने बताया था कि समुद्री जल स्तर में वृद्धि, महासागर में तापमान वृद्धि, महासागर में अम्लीकरण और ग्रीन हाउस गैसों की सघनता जलवायु के इन चार प्रमुख संकेतकों ने पिछले साल रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं। पृथ्वी ग्रह पर मौजूद ऑक्सीजन का 50% से अधिक हिस्सा महासागर से आता है और यह 1 अरब से ज्यादा लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत भी है। यूएन के शीर्षतम अधिकारी ने आगाह किया कि इसके बावजूद महासागर के संसाधन और जैव विविधता मानव गतिविधियों के कारण कमजोर हो रहे हैं। यूएन प्रमुख ने इन चुनौतियों की पृष्ठभूमि में कारगर कार्रवाई का आह्वान किया है।
It is time to realize that to achieve the Sustainable Development Goals and the objectives of the Paris Agreement on climate change, we urgently need collective action to revitalize the ocean.
महासचिव गुटेरेश कह रहे थे कि टिकाऊ विकास लक्ष्यों और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तत्काल सामूहिक कार्रवाई की जानी होगी ताकि महासागरों में फिर से ऊर्जा का संचार किया जा सके।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हंगरी के एक अनुभवी राजनीतिज्ञ क्साबा कोरोसी को आगामी 77वें सत्र के लिए अपना अध्यक्ष निर्वाचित किया है। ये चुनाव न्यूयॉर्क स्थित यूएन मुख्यालय में मंगलवार को आधिकारिक समारोह के दौरान संपन्न हुआ और इसमें मतदान की आवश्यकता नहीं हुई। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए 5 नए देश निर्वाचित हुए हैं। कुछ और जानकारी के साथ शिवानी काला।
राजदूत क्साबा कोरोसी हंगरी के राष्ट्रपति कार्यालय में पर्यावरणीय सततता के निदेशक हैं। वो संयुक्त राष्ट्र की मुख्य विचार विमर्श व नीति निर्माता संस्था महासभा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सितंबर 2022 में 1 साल के लिए शुरू करेंगे। नए अध्यक्ष ने एकजुटता, सततता व विज्ञान के माध्यम से समाधान तलाश करने की मंशा प्रकट की है और यही 3 वाक्य यूएन महासभा के 77वें सत्र के दिग्दर्शक भी होंगे। इस बीच यूएन महासभा में गुरुवार को मतदान के जरिए सुरक्षा परिषद के जिन 5 नए सदस्यों का चुनाव हुआ है उनके नाम हैं इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। नव निर्वाचित देश अगले साल जनवरी में 2 साल के लिए सुरक्षा परिषद की सदस्यता ग्रहण करेंगे। सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए हर साल 5 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं।
भारत के चंडीगढ़ की पुलिस सेवा में सेवारत इंस्पेक्टर परमजीत कौर सेखो दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन 19 में शांति रक्षक के रूप में कार्यरत हैं। यूएन न्यूज की हमारी सहयोगी अंशु शर्मा के साथ उनकी खास बातचीत के कुछ अंश।
तो शांति रक्षक बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली, अपने सफर के बारे में हमें कुछ बताइए।
मैं इंडिया में इंस्पेक्टर पद पे कार्यरत हूँ और चंडीगढ़ पुलिस में हूँ। मेरे बहुत सारे साथी जब मिशन में गए आके उन्होंने बताया कि ये एक बहुत बड़ी यूनाइटेड नेशंस एक बहुत बड़ी संस्था है जहाँ पे हमें इंटरनेशनल लेवल पे काम करने का मौका मिलता है। हम दुनिया भर के लोगों से, दुनिया भर के पुलिस के लोगों से और उनकी पुलिस में कैसा काम होता है वो जानकर आते थे। तो इस बात के लिए मुझे भी हुआ कि मुझे भी वहां जाना चाहिए और देखना चाहिए और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आके मिशन में काम कर रही हूँ।
हम ये जानना चाहेंगे कि एक शांति रक्षक के रूप में आपकी रोजमर्रा की दिनचर्या क्या रहती है।
हमारा जो यहाँ काम है वो सुबह 8 बजे शुरू होता है और पुलिस का काम तो 24/7 हर जगह ही चलता है। आर्मी के साथ, मिलिट्री के साथ, सिविलियन के साथ मैं काम करती हूँ। बाहर पब्लिक में हमने क्या क्या सेमिनार्स करने हैं, पब्लिक को कैसे समझाना है, जो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग टीम है वो उनके साथ जाके काम करती है और उनको बताती है कि और क्या सुधार किए जा सकते हैं उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए।
परमजीत कौर सेखों के साथ ये इंटरव्यू वीडियो फॉर्मेट में हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, पता है news.un.org/hi। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही, अब महबूब खान को अनुमति।